ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आवाज आप लोगों को स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? ठीक। हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 17 माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप, इसके श्लोक क्रमांक 10 को पढ़ेंगे। इत्यद्वीर्य विदुषी ब्रुवाणे बहवशोभनम् रुषाह देवी धृष्टाया निर्जितात्माभिमानिने। देखिए, पहले हम लोग श्लोक से परिचित होना चाहते हैं, होंगे। इति तो मतलब हो गया इस प्रकार। इस प्रकार का अर्थ हुआ, पिछले श्लोकों में बताया गया है कि चित्रकेतु महाराज किस प्रकार से क्या आलोचना किए थे शिव जी की। बाह्य रूप से आलोचना थी, तो इति का मतलब हुआ। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान अपि तत् श्रुत्वा, शिव जी ने यह सुना, उनकी आलोचना को सुना। दिखा सकते हैं पिछला श्लोक? यस। प्रहस्याग प्रहस्य अगाध धी नृप। तो जो शिवजी हैं उनका ज्ञान अगाध है। वो जान रहे थे कि चित्रकेतु महाराज ने ये क्यों बोला। ये बहुत ही गुह्य पॉइंट है। देखिए, प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक पे बहुत गुह्य पॉइंट बताया है कि ये चित्रकेतु महाराज ने बोला ही क्यों। पब्लिक में शिवजी की इस प्रकार की, जो महान भागवत है, महाभागवत है, इस प्रकार की निंदा क्यों करी? बाह्य रूप से निंदा क्यों करी? निंदा नहीं थी, उसका प्रयोजन समझना चाहिए। उसका प्रयोजन ये था कि भगवान विष्णु तो आचरण हमेशा अच्छा करते हैं, तो लोग उनकी निंदा नहीं करते हैं। लेकिन शिवजी महाभागवत हैं, महान वैष्णव हैं, और यदि वह कदाचित ऐसा आचरण करते हैं जिसको बाह्य प्रवृत्ति के लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वह उसका उनका उनकी निंदा करेंगे और वह गिरेंगे। कौन गिरेंगे? जो शिव जी की निंदा कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? उन्होंने इस प्रकार से इसलिए कहा ताकि शिवजी की महिमा प्रकाशित हो सके। देखो कितने महान है, क्या है शब्द आया था, महाव्रतधर, महान ब्रह्मचारी हैं, फिर भी सदसी ऋषियों के समाज में स्त्री के साथ बैठे हैं। तो यहां पे उनका गुण भी प्रकाशित हो रहा है। पिछले 8वें श्लोक में आप देखेंगे, और 9वें श्लोक में शिवदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रहस्य अगाध धी नृप, यानी कि शिव जी केवल हंस दिए। वो जान रहे हैं इनका अभिप्राय, किनका अभिप्राय? चित्रकेतु महाराज का, कि ये मेरी निंदा नहीं करना चाहते हैं, और इस कारण से हंसे और चुप रहे। और बाकी जो कह रहे हैं, तुष्टिम बभू व सदसी सभ्याश्च तदनुव्रतः, जो अन्य लोग, उस सदस्य लोग वहां पे थे, ऋषिगण थे, वह भी समझ रहे थे कि शिव जी की कोई अपमान या शिव जी की निंदा चित्रकेतु महाराज ने नहीं करी है। इसको प्रभुपाद जी लास्ट पार्ट में बताते हैं कि यदि निंदा होती तो इतने महान भागवत की निंदा होने के कारण ऐसे स्थान में उनके लिए रुकना भी संभव नहीं होता, क्योंकि ये शास्त्र का प्रमाण है कि कोई व्यक्ति अगर वैष्णव की निंदा सुनता है तो उसके पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं। तो ये दो प्रमाण हैं, स्वयं शिव जी क्रोधित नहीं हुए और उन्होंने चित्रकेतु महाराज को नहीं डांटा। दूसरा पॉइंट है, कि अगर अपराध होता चित्रकेतु महाराज का तो सभा के अन्य सदस्य भी वहां से उठकर चले जाते, तो यह स्पष्ट है कि अपराध नहीं था। लेकिन बोलने का उद्देश्य समझ में आ रहा है, वह सब क्यों बोल रहे हैं। प्रभुपाद इसमें बोलते हैं कि अगर कोई शिव जी की, हाँ कहते हैं कि शिव जी परम वैष्णव एवं परम शक्तिशाली देवता होने के कारण शिव जी अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने में समर्थ हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से समान व्यक्ति का सा आचरण कर रहे थे और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे थे, किंतु ऐसे कार्यों से उनकी उच्च स्थिति में कोई कमी नहीं आती। कठिनाई यही है कि समान व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उनका अनुकरण कर सकता है, समान व्यक्ति को उनका आचरण उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। और अगर वह उनकी आलोचना करते हैं, समान व्यक्ति भी दक्ष की भांति जिसने आलोचना का फल भोगा वह शिव जी की आलोचना करके कष्ट का भागी हो सकता है। तो समझ रहे हैं, शिव जी के इस आचरण को देख करके कोई सामान्य व्यक्ति उनकी आलोचना करेगा और इससे उन लोगों को बचाने के लिए जो लोग शिव जी की महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, चित्रकेतु महाराज ने ये बातें बोली थी शिव जी के बारे में। अभी तो समय नहीं कि एक एक बात का हम चर्चा कर सकें कि क्या क्या उन्होंने बोला और क्यों बोला, लेकिन उद्देश्य ये था। चक्रवर्ती पाद इस बात से समझाते हैं और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य को ही पूरा लिखते हैं। अब इस श्लोक में हम देख रहे थे, हम पहले शब्दों पर बात कर रहे थे इति, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इति मतलब इस प्रकार से जब शिव जी ने बोला, सॉरी चित्रकेतु महाराज ने कहा, और चित्रकेतु महाराज के गुण बता रहे हैं या एक लक्षण बता रहे हैं, कह रहे हैं अतद वीर्य विदुषु, वीर्य मतलब शक्ति, अतद तद मतलब शिव जी, अतद वीर्य शिव जी के शक्ति को ना समझने के कारण, विदुषी उनकी, विदु मतलब जानना, तो अतद वीर्य विदुषी का अर्थ हुआ कि वो शिव जी के शौर्य को नहीं जान रहे थे। और इस कारण से ब्रुवाणे उन्होंने कहा बहव अशोभनम, जो अशोभनीय बात है वह कहीं बाह्य दृष्टि से जो अशोभनीय बात है वह कहीं शिव जी के संबंध में, जिसकी वजह से रुषाहा देवी पार्वती गुस्सा हो गई। रुषा मतलब होता है गुस्सा और आहा मतलब उन्हें कहा, किसको कहा, धृष्टाया, जो ये धृष्टता करी है शिव चित्रकेतु महाराज ने उनके लिए कहा। और धृष्टता को समझाने के लिए कह रहे हैं निर्जित आत्मा भी मानिने, वह अपने आप को, चित्रकेतु महाराज अपने आप को शिव जी से भी अधिक इंद्रिय संयम करने वाला समझ रहे थे, इस कारण से वह गुस्सा हो गई। तो अब यह सब बातें हमें दुर्गा जी के रेफरेंस पॉइंट से देखना चाहिए। दुर्गा जी सोच रही हैं कि यह व्यक्ति अपने आप को शिव जी से अधिक श्रेष्ठ मानता है इंद्रिय संयम करने में, इसलिए भ्रष्ट है और इसलिए बहव अशोभनम, बहुत सारी अशोभनीय बातें कह रहा है, समझ रहा है, इसी कारण गुस्सा हो रही है। इस श्लोक में, इस तात्पर्य में बहुत सारी शिक्षा हम लोग को प्राप्त होंगी, हमारे भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखिएगा मेरे पीछे आप शब्दार्थ बोलिए, इति इस प्रकार, अतद वीर्य विदुषी, शिव के शौर्य को ना जानने के कारण चित्रकेतु ने ब्रुवाणे कहा बहु अशोभनम, अत्यंत अशोभनीय बातें उच्च पदीय शिव की आलोचना, रुषा क्रोध से, आह कहा देवी पार्वती धृष्टाया निर्लज्ज चित्रकेतु से, निर्जितात्मा जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। इसको आप समझ सकते हैं, आत्म मतलब शरीर इंद्रियां मन, तो जित मतलब जीतना और निर्जित मतलब नितराम जीता, बहुत अच्छे से जिसने जीत लिया हो। अभिमानिने, अपने आप को मानते हुए। अनुवाद, शिव जी तथा पार्वती के शौर्य यानी वीर को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना करी। देखिए प्रभुपाद जी की पहली लाइन कितनी अद्भुत है, वो केवल यह नहीं कह रहे हैं कि शिव जी वीरवान हैं, अपितु पार्वती जी भी वीरवान हैं। क्यों? जब शिव जी और पार्वती जी साथ में बैठ करके कथा शिव जी बोल रहे हैं, उनके पार्वती बगल में बैठ रही हैं, तो वह भी कथा सुनने में ही संलग्न है, वह भी उतने ही विरक्त हैं जितने कि शिव जी हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह कोई काम आ सकते इत्यादि, या उन्होंने कोई बहुत आग्रह किया होगा कि मुझे इस प्रकार से, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मतलब कोई काम आ सकती की बात नहीं है वहां पे, वह भी उसी प्रकार से योग्य हैं। उसके वचन तनिक भी अच्छे लगने वाले न थे, अतः अत्यंत क्रुद्ध देवी पार्वती चित्रकेतु से, जो अपने को इंद्रियों के नियंत्रण में शिव जी से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। तात्पर्य, यद्यपि चित्रकेतु शिव का अपमान नहीं करना चाहता था, किंतु उसे चाहिए था कि उनकी आलोचना नहीं करता, भले ही शिवजी सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे फिर भी उनकी आलोचना न करता। ये दो बार क्यों आया इस किताब में? आज में भी आया क्या? सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ये समझ रहे हैं, वह जान रहे थे चित्रकेतु महाराज शिवजी की महानता को जानते थे, लेकिन उनके तथाकथित शिष्टाचार के पालन को पब्लिक में इस प्रकार से आलोचना करना, यह उनका अधिकार नहीं था, यह अधिकार नहीं था। अगर कोई महान व्यक्ति कुछ कार्य हमारी दृष्टि में गलत कर रहा है, तो पहले यह देखना चाहिए कि क्या मेरा अधिकार है उनको करेक्शन देने का। बहुत ही गंभीर बात है, प्रभुपाद इस बात को टच करेंगे। हर वैष्णव को हमें सम्मान देना चाहिए, खुद मीटर नहीं लगा लेना चाहिए कि कितना बड़ा वैष्णव है कितना नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? आज एक भक्त ने मुझसे पूछा कि प्रभु जी, हम जब अच्छे से करते हैं तो ये अहंकार आ सकता है कि मेरा जब दूसरों से अच्छा है, तो ये बताइए कि ये मीटर कहाँ है आपके पास कि दूसरे का जब आपसे अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या मीटर है बताइए? ये तो आप नहीं कह सकते हो, आप अपना जब के बारे में बोल सकते हो। ये इस प्रकार से हम अपने मन की दृढ़ता को पकड़ पाते हैं कि सामने वाले की भक्ति की स्थिति क्या है, हम कैसे अंदाज लगाएंगे। हमारे भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे कि जिस स्थिति पे हैं हम लोग, मान लीजिए हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं, तो उससे ऊपर वाले के स्तर का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो निष्ठा पे है कि रुचि में है कि आसक्ति में है कि भाव में है। निष्ठा वाला समझ सकता है, हाँ ये व्यक्ति जो नीचे के स्तर का है वह अनर्थ निवृत्ति पे है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए दूसरे का अंदाजा लगाना ये हमारी सेवा ही नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, अगर इंग्लिश में सिंपल शब्दों में कहा जाए, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने भक्ति को देखिए। हाँ, अगर कोई भक्त आपके शरणागत हैं, आपके कह सकते हैं आपके अंडर में क्या कहेंगे हिंदी में, अनुगत होकर के भजन कर रहे हैं, तो उनकी भक्ति में अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको करेक्शन करना वह हमारा दायित्व है, लेकिन वह भी बड़े प्रेम पूर्वक होना चाहिए। उसको हीनता नहीं दिखाना चाहिए, तुम कितने हीन हो, तुम तो ऐसे खराब हो, ऐसा नहीं, फिर वो सीख नहीं पाएगा। उसकी हित कामना से उसको करेक्शन देना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मुझे एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी ने बोला था, करेक्शन शुड बी स्पेयरिंगली गिवन एंड लविंगली गिवन। बहुत इस शिक्षा का पालन करना बड़ा कठिन है। किसी को करेक्शन क्या कहेंगे, आलोचना बड़ी प्रेम पूर्वक दी जानी चाहिए और बहुत कम देनी चाहिए। हर चीज पे आलोचना करते रहेंगे तो जो भक्त भी हमारे साथ में है या हमारे आसपास के, वो हमसे दूरी भागेंगे। ये तो आलोचना बैंक है, देखो ना, क्वेश्चन बैंक, ऐसे हर चीज की आलोचना करते रहेंगे तो हम अपनी आलोचना कभी नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर क्या गलती है। वैसे एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जब हम वृत्तासुर की प्रार्थना सुनते हैं, अहम हरे ताव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः, तो उसपे आचार्यगण बोलते हैं बहुत सुंदर बात कि यहाँ पे भगवान के सीधा दास बनने की प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं, परंपरा के दास क्यों बनना चाहते हैं, दासानुदास क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात बोलते हैं, वो कहते हैं उन्हें याद है कि भगवान के सीधा दास बनने से उनके मन में अहंकार आ गया था और अन्य वैष्णव के प्रति अपराध हो गया था, शिवजी के प्रति अपराध हो गया था, इस कारण से वह दासत्व से हट गए। एकदम स्पष्ट टीका में लिखा हुआ इस प्रकार से। तो अब वह परंपरा के दास बनना चाहते हैं, मतलब दासानुदास बनना चाहते हैं, ताकि किसी भी भक्त के प्रति अपराध की भावना न जागृत हो। ये बात आप पहले के मतलब श्लोक पहले बोला जा चुका है। तेजी असाम न दोषाया, जो परम समर्थ है उसे निर्दोष मानना चाहिए। उदाहरणार्थ किसी को सूर्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, यद्यपि वह सड़कों से मूत्र आदि को उड़ाता है। उड़ाता मतलब सोखता है, उड़ाना मतलब हवा में नहीं उड़ाता है, सोखता है और उस स्थान को पवित्र कर देता है। देखिए यही चीज, यही बात भगवान कृष्ण पे भी घटित होती है। भगवान कृष्ण पूरी तरह से स्वराट हैं और वह ऐसी लीला प्रस्तुत करते हैं कि रासलीला या चीरहरण लीला, जिसको लोग गलत समझ करके उनको भगवान नहीं मानते, ठीक ठीक प्रकार से लीला नहीं समझ पाते, तत्व नहीं समझ पाते हैं, तो उनको भगवान नहीं मानते। ऐसे ही शिव जी के बाह्य आचरण से पहली बात तो समझना चाहिए, रासलीला और चीरहरण लीला उसमें कोई गलती नहीं है। शिव जी का अपनी पत्नी को साथ में रख करके प्रवचन करना कोई गलत नहीं, गलत होता तो नारद जी पहले ही बोल देते जो बैठे हुए थे, ब्रह्मचारी लोग सब बैठे हुए हैं और जब वह ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन बाह्य दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार से करना बहुत गड़बड़ है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य जो मलमूत्र है उसको एक दृष्टि से टच करता है, मतलब अपनी किरणों के द्वारा, और सुखा देता है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अरे दुनिया के मलमूत्र की बात छोड़ दीजिए, अपना ही मलमूत्र को हम शुद्ध नहीं कर सकते, बल्कि अशुद्ध हो जाते हैं त्याग करने की बात है ना। तो यानी जो शक्ति सूर्य में है वह शक्ति हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। और यही बात वहां पर भी बोली गई थी, जो इस प्रकार से भगवान की रासलीला का अनुकरण करते हैं वो वैसा है कि वो जहर खाने के समान। जैसे शिव जी जहर खा लेते हैं, मैं श्लोक भूल रहा हूँ, श्लोक तो याद नहीं आ रहा ठीक ठीक, लेकिन उसका अनुवाद इस प्रकार से कि शिव जी जहर खाए हैं लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं होता, अभी तो वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जगत के कल्याण के लिए वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार से अगर कोई सामान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करता है तो निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त होगा, कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं तेजी या साम न दोष आए, जो तेजवान है वीरवान है उनका दोष नहीं देखना चाहिए। एक बात और, चैतन्य भागवत में भी ये बात आती है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिखा रहे हैं, मुकुंद दत्त को सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो वो जो मरीचि के 6 पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी की कुछ समय के लिए कुछ क्षणों के लिए मति कामासक्त होकर के अपनी पुत्री वाक के प्रति हो गई थी, तो उनपे वो हंसे थे, तो उस हंसी वो एक कुछ क्षण के लिए वो हंसे थे, मजाक बनाया था ब्रह्मा जी का, तो उसकी वजह से उनको काल नेमी का नामक असुर का बेटा बनना पड़ा। फिर उसके बाद वे देवकी के पुत्र बने और उसी काल नेमी ने कंस बन करके अपने ही पिछले जन्म के बच्चों को फिर से मारा, एकदम असहाय अवस्था में मारे गए, उसके बाद उनका उनका वो उद्धार हुआ। तो आप समझ सकते हैं, तो महाप्रभु से दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से एक महान व्यक्ति का आलोचना करना बहुत भारी पड़ सकता है। और आप अगर देखें, ये तो विचार करने वाली बात है, कितना समय लगा, 1, 6, 7 और 8, 3 श्लोक बोलने से कितनी बड़ी विपदा आ गई। तो आप देख सकते हैं कि वाणी का प्रयोग बहुत खतरनाक होता है। जैसे इस संबंध में एक महाराष्ट्र एक कथा सुनाते हैं, क्या कहते हैं, बातन हाथी पाए। तो संबंध में वो कथा बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, वो आशु कवि थे, नाम भूल रहा हूं उस कवि का। तो कवि एक राजा के यहाँ पे कविता लिखते थे, इतनी सुंदर कविता लिखते थे कि उन्होंने हाथी दे दिया था उसको, नाम क्या नाम भूल रहा हूं उनका। तो एक बार राजा ने कहा कि मेरी रानी का गुणगान कीजिए, तो गुणगान किया उसके सौंदर्य का, लेकिन एंड में लिख दिया कि इसकी नाक छछुंदा जैसी है। अब जब रानी ने यह सुना तो बहुत क्रोधित हो गई और उसने कहा कि इसकी जान मारनी है। तो राजा बहुत बोला, नहीं नहीं बहुत अच्छे कवि हैं, ऐसा है वैसा है, अरे ऐसे कैसे, प्राणदंड तो नहीं देना चाहिए। कहते नहीं, या तो आप इसको प्राणदंड दीजिए या तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर उनको हाथी के नीचे पीस दिया गया। तो मतलब वही कविता लिख करके हाथी पा रहे थे, और एक लाइन यहाँ पे भी, एक लाइन छचुंदर की, नाग जैसे छचुंदर को, बस उसी से हाथी पा लिया, हाथी का पाय मतलब हाथी का पाय मतलब पांव पाया। तो हमें बहुत देखना है कि छोटी सी बात बहुत गंभीर कर सकती है। सुना होगा आपने रहीमन, एक दोहा है, मैं ऐसे कोट कर रहा हूँ, सुना है, अच्छा है, रहीमन जिह्वा बावरी
कह गई सरग पताल, आपन तो भीतर गई जूता खात कपाल। सुने हैं इसको, बहुत अच्छा है। रहीम जी कह रहे हैं, अब हम रहीम जी हमारे शिक्षा गुरु नहीं है, लेकिन एक बात शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं कि जीव जो है क्या क्या बातें करती है, स्वर पताल सबकी बातें कर रही है और कह करके अंदर चली जाती है, देख लीजिए यहाँ पे भी, और उसके बाद कपाल को जूता खाना पड़ता है। तो वाणी से ही बहुत अपराध होता रहता है। और यहाँ पे भी आप देखिए चक्रवर्ती बात इस बात को कहती है, अरे भाई वाणी के अपराध जो पहला अपराध है वैष्णव की निंदा करना, इसको इतना महान क्यों मान रहे हो, इतना ज्यादा क्यों मान रहे हो? तो कहते हैं ये मर्म आहत करने वाला है। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि दुर्गा जी का मर्म आहत हो गया और वो क्रोधित हो गई जैसे ही उनने इस प्रकार से सुना, देख रहे हैं। इसलिए वाणी को सेम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से पॉजिटिव में देखें तो देखिए नारायण बोल दिया उसने अजामिल ने, तो उसकी वो मुक्ति का कारण हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाए रखें ताकि वाणी को इस प्रकार से अपराध करने का मौका ना मिले। परमपुर जी वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे, गौशाला में आके बता रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि ज्यादा भाषणबाजी करने से बहुत अपराध होते। मतलब कृष्ण कथा की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन दुनिया में अगर कोई विषय हो रहा है और हर उस विषय पर हम बात कर रहे हैं या हर भक्त के बारे में कोई बात हो रही है उसमें हम संलग्न हो रहे हैं, तो काफी संभावना है कि हम अपराध कर बैठे। अगर चित्रकेतु महाराज ये तीन श्लोक नहीं बोलते तो भागवत में उनकी स्टोरी थोड़ी अलग तरह से होती। एक बात मैं बता देना चाह रहा हूं उससे पहले कि मैं भूल जाऊं उस बात को, कि आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि ये सब हो क्यों रहा है, चित्रकेतु महाराज को इस प्रकार से भगवान क्यों प्रेरणा दे रहे हैं बोलने के लिए, ये सारा कुछ होने की जरूरत क्या है? तो इसको पहले के श्लोकों में समझाया गया है कि भगवान अब चित्रकेतु महाराज से विरह का अनुभव कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चित्रकेतु महाराज मेरे पास आ जाए, तो इस कारण से सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब आप फिर प्रश्न करेंगे, अरे तो भाई असुर बनाने की क्या जरूरत थी? इसका उत्तर मेरे पास नहीं। भगवान किस भक्त को किस प्रकार से अपने पास लेके आना चाहते हैं इसकी कोई इक्वेशन नहीं है। अजामिल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अजामिल सीधे वैकुंठ के विमान पे बैठे हो चले गए। ध्रुव महाराज को कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन ध्रुव महाराज को बोला 36,000 साल राज्य करो, उसके बाद वैकुंठ गए। तो कैसे कोई भक्त भगवान के पास जाएगा ये भगवान ही जानते हैं। आप उस ब्राह्मण के बारे में जानते हो प्रतिष्ठानपुर का, वो खीर मन में बना रहा है, उसका भजन सिद्ध हो गया तो भगवान उसको वापस लेके आ गए। लेकिन ये बात सत्य है कि जो कृष्ण का भजन कर रहा है वह कृष्ण की प्राप्ति करेगा ही, इसकी बात इसकी गारंटी भगवान स्वयं लेते हैं। कैसे करेगा कब करेगा वो भगवान जानते, उसकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में आचार्यों की बहुत सुंदर टीका है कि भगवान जानते हैं कि भक्त के हृदय में उनके प्रति उत्कंठा को कैसे जागृत करना है। मैं फिर से रिपीट करूं, समझ में आई बात? भगवान जानते हैं कि उनको प्राप्त करने की उत्कंठा, उसके बिना तो भगवत प्राप्ति होगी नहीं, भक्त के साधक के हृदय में कैसे जागृत करने। ये सब बातें हैं, मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, और इसीलिए वो हर भक्त के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था, नाम भूल रहा हूं मैं, सा से ही नाम था कुछ, स्तोक कृष्ण प्रभु, और उन्होंने यहां बरसाना में प्रार्थना किया। वो बहुत पहले ब्रह्मचारी थे, फिर उसके बाद वो गृहस्थ बन गए, और उसके बाद बहुत लाइक माया में सो टू स्पीक कुछ समय के लिए, भक्तों ने समझाया भी नहीं समझ पाया। तो यहाँ पे थे और बरसाना में राधा रानी से प्रार्थना किए कि राधा रानी लगता है मुझे कैंसर होगा तभी मुझे हरि नाम रुचि प्राप्त होगी, और एक हफ्ते बाद उन्हें कैंसर हो गया। और जब वह हॉस्पिटल में थे तो जिनको साक्षात्कार प्राप्त थे उनसे मिलने के लिए बहुत सारे सन्यासी भी आए थे, फोटो में इस प्रकार से गुरु महाराज आए, अन्य महाराज लोग भी आए, और जो समय उनको साक्षात्कार प्राप्त हुए थे वो अद्भुत थे, वो अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन किस भक्त को कैसे भगवान अपने पास लेके आएंगे अपने जानते। सबने वो पढ़ा होगा सॉल्टेड ब्रेड, उसमें किस आप जानते हो एक भक्त, उनका नाम भूल रहा हूं, रशियन कुछ नाम था, शची सुताजा था नाम था, और उनकी पीठ तोड़ दी थी बेचारे की, और उसके बाद भी जब शरीर त्यागे तो पद्मासन लगाए हुए थे और मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते शरीर छोड़, तब कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या दर्शन कर रहे हो। जिस व्यक्ति की पीठ टूटी हुई है वो इस प्रकार से बैठ करके जेल में मुस्कुराते हुए इतनी कठिनाइयां सहन करते हुए शरीर त्याग दे, एकदम ऐसे लग रहा है बिल्कुल इच्छा मृत्यु जैसे हो रही है। तो कैसे भगवान भक्त को लेके जाएंगे हम जानते नहीं। तो ये सारा प्रकरण चित्रकेतु महाराज को अपने पास बुलाने के लिए वापस, यही बात समझना चाहिए। और ये भी सोचने वाली बात है कि ये सबको समझ में आ रहा है तो पार्वती जी को समझ में नहीं आ रहा है।
क्योंकि पार्वती जी के हृदय में भी भगवान है और इस प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं उनको शाप देने के लिए। समझ रहे ना सब बातें। सर्वाधिक शक्तिमान की आलोचना न तो सामान्य व्यक्ति द्वारा न ही महान पुरुष द्वारा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपने बोला कि एक महान व्यक्ति है उसकी आलोचना सामान्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं सामान्य व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए और महान व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए। महान व्यक्ति की आलोचना न सामान्य को करनी चाहिए, सामान्य तो बेचारा वैसे ही फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी उसकी भक्ति, और महान भी महान की भी नहीं करनी चाहिए। संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, निंदा से सर्वदा बचना चाहिए। निंदा करते रहेंगे तो गुरु जी की भी निंदा चालू कर देंगे, और गुरु जी की निंदा शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद भगवान की निंदा भी शुरू कर देंगे। कोई प्रमाण जान रहा है, कोई स्मरण आ रहा है किसी को प्रमाण? रामचंद्रपुरी, वह श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी को करेक्शन दे रहे हैं कि अरे तुम कहां रो रहे हो कृष्ण के लिए, तुम ब्रह्म का ध्यान करो। तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, और फिर यही रामचंद्रपुरी जाकर के महाप्रभु को शिक्षा दे रहे हैं, उनका दोष निकाल रहे हैं। तो निंदा करते रहने में कठिनाई ये है कि हो सकता है कि किसी महान भक्त की निंदा हो जाए। समझ रहे हैं? असम्मान करने की आदत रहेगी तो एक महान व्यक्ति का भी असम्मान हो जाएगा, तब बहुत भारी पड़ेगा। और अगर सम्मान कर रहे हैं तो अगर किसी सामान्य व्यक्ति का भी सम्मान कर दिया तो कोई नुकसान होगा नहीं? अगर एक सामान्य व्यक्ति का भी आपने सम्मान कर दिया, हाँ भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। और ऐसे सम्मान करने की आदत रही तो किसी महान वैष्णव का सम्मान कर दिया तो हो गया पार। एक उदाहरण, महाराज जनरिक दान दे रहे थे। देखिए, महाराज जनरिक की आदत थी दान देने की, दान दे रहे हैं। बहुत सारे गौ में दान दिए, कथा आप जानते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक टीका में उसमें कि एक बार एक भक्त आए और उन्हें कहा कि आप मंदिर बनाइए जहां मैं गीता और भागवत को रखना चाहता हूं। अब दान देने की प्रवृत्ति है, खुश है, ठीक है, करवा दी, तुरंत मंदिर की व्यवस्था कर दी। तो उस भक्त ने आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन कृष्ण को देखोगे। तो इसी कारण से, उस भक्त के आशीर्वाद के कारण ही, आप जानते हो बाद में छिपकली बनते हैं जो भी है, और वह भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करते हैं, महान भक्त का आशीर्वाद। समझ रहे हैं? वृत्ति अगर सम्मान देने की है तो हम लोग अपराधों से बचते रहेंगे। चक्रवर्ती पाद इसको 29वें श्लोक में, 29वें अध्याय तीसरे स्कंध में कहते हैं, जब तक असम्मान की भावना रहेगी तब तक अपराध बनेंगे ही। और इसको आप सुनते भी हैं, सकल सम्मान कोरे ते शकति देहो नाथ जता जता तबे तो गाई बो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। ये बहुत मुश्किल है। भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कब आप इस प्रकार के गुणों को मुझको देंगे कि मैं सभी का सम्मान कर सकूं। सभी को, सभी जीव तो भगवान के अंश हैं, सेवक हैं, उनके आपके सेवक के रूप में देख सकूं, और ये देख सकूं कि वह भी सेवा में लगे हुए हैं, वह भी आपको प्रसन्न कर रहे हैं, केवल मैं ही प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वैष्णवों के समाज में हम ये देखें कि कोई व्यक्ति जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है और भक्ति का अंग अनुशीलन कर रहा है, वह कृष्ण को सुख दे रहा है, वह कृष्ण को प्रिय है। ये तो धर्मामृत व्रतम यथोक्तम पर्युपासते सद्ध धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिय। जो शुद्ध भक्ति के पथ पे आए भी हैं, साधना कर रहे हैं, वह भी भगवान, उनको भगवान कह रहे हैं कि वे मुझे बड़े प्रिय हैं। अब वो बाह्य दृष्टि से कुछ उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, वो ठीक है, मतलब वह शुद्ध हो जाएगा, लेकिन भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं एक निष्ठ होकर के, यह देख करके हमें सम्मान करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। मैं स्पेशली बहुत खतरनाक स्थिति में हूं कि मैनेजमेंट में होने में इस प्रकार की अपराध की भावना आ ही जाती है, राग द्वेष आ ही जाता है, लेकिन इससे बचना है। ठीक है, इस पर एक व्यक्ति प्रश्न किया था परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को कि महाराज वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है तो अच्छा हुआ कि वैष्णव से दूर रहे। तो महाराज बड़े तोला क्रोध में महाराज बोले, अरे भाई ये बिजली है, बिजली बहुत खतरनाक वस्तु है ना। तो उसको बोला जाता है ना कि बिजली से आप संभाल करके उपयोग करें ताकि करंट ना लगे। अब बिजली उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान देते हैं ना करंट ना लगे, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि बिजली का उपयोग ही ना करें। बिजली से तो सारा कुछ कार्य किए जा सकते हैं। तो उसी को पॉजिटिव में लिखना, वैष्णव की सेवा करें, वैष्णव को सुख दें, तो हमारा बहुत कल्याण होगा। जैसे भी हमारे यहाँ पे कुछ भक्त, हमारे ब्रह्मचारी भक्त ब्रह्मचारियों के लिए कुकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्नता होती है? क्योंकि भागवत में 3 जगह बोला गया है कि भगवान विष्णु ही बोल रहे हैं, कपिल देव बोल रहे हैं, ऋषभ देव बोल रहे हैं, और भगवान एक और भगवान हमारा बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण शायद बोल रहे हैं, यहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। कि मैं अग्नि के द्वारा भोजन स्वीकार करता हूं, लेकिन वो मुझे उतना पसंद नहीं है जितना कि वैष्णवों के मुख से, थोड़ा महंगा चीज है, घी के बने हुए वस्तु दी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास घी नहीं है तो जो व्यवस्था है उसमें बना के दीजिए, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति ऐसे वैष्णव हैं, तो उनकी सेवा, इस प्रकार की सेवा भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो हमें पॉजिटिव देखना है कि ये तो केवल एक तरह से सेवा है, सेवा बहुत तरह से होती है, भोजन करा करके या उनकी किसी तरह से मदद करके हम वैष्णवों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस पर बहुत विस्तार से बोला जा सकता है, समय होगा तो मैं बोलूंगा, अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो महान पुरुष के द्वारा भी निंदा नहीं होनी चाहिए। हमने सुना है ना, बहुत उच्च कोटि का भक्त भी है, अगर वैष्णव अपराध हो जाता है तो वह नीचे गिरता है, नीचे आ जाता है, ह्रास हो जाता है। चित्रकेतु को यह समझना चाहिए था कि यद्यपि शिव उस प्रकार बैठे हुए थे तो भी उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए थी। स्पष्ट है, कठिनाई यह थी कि चित्रकेतु भगवान विष्णु संकर्षण का परम भक्त हो गया था और संकर्षण का वर प्राप्त होने से उसे कुछ कुछ घमंड भी हो आया था। अतः उसने सोचा कि वह किसी को भी, चाहे वह शिवजी क्यों ना हो, आलोचना कर सकता था। ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास अधिक शक्ति आती है। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति इंद्रियों का संयम करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उसके पास शक्तियां आने लगती हैं। प्रथम स्कंद में आप नारद जी के वक्तव्य सुनेंगे कि पहले दिव्य ज्ञान उनके हृदय में उदित हुआ, उसके बाद अलौकिक शक्तियां आने लगी और फिर प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। ये तीन स्टेज में आता है। तो अब स्वाभाविक है कि हमारे पास विचारशीलता अधिक है, दिव्य ज्ञान हृदय में स्फुरित है, तो हम लोगों से अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, हो ही जाएंगे, बुद्धिमान होते ही हैं भक्त लोग, अधिक विचारशील होते ही हैं। और हो सकता है भक्ति में करते रहे तो अधिक शक्तियां भी आने लग जाएं, लोगों को प्रभावित कर सकें। लेकिन सारी चीजों में करते हुए अगर हम यह सोचने लगे कि हम अन्यों से श्रेष्ठ हैं, तो तुरंत संभावना है कि हम किसी का असम्मान करें। ये समझ रहे हैं मेरी बात? ये सबको संग होगा, जो भक्ति कर रहे हैं उनके पास दिव्य गुण आएंगे ही, कुछ शक्तियां भी आएंगी, लेकिन अहंकार, उस अगर हम अहंकार से वशीभूत हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम अपराध कर सकते हैं, तो इसलिए बचना चाहिए। अब इसका मतलब ही नहीं प्रभुजी, तो फिर इसका एप्लीकेशन क्या है कि भक्ति करे ही नहीं तो दिव्य गुण आएंगे ही नहीं और इस कारण से हम अपराध करेंगे नहीं, यह बात नहीं है। केवल यह देखना है कि हम अपने मन को इस प्रकार से हमारे संग छल करने से बच सके, कि हमारा मन हमारा छल ना कर सके, तुम श्रेष्ठ हो अन्य लोगों से। इस संबंध में मैंने महात्मा प्रभु को पूछा कि प्रभु जी, हम लोग भक्ति करते हैं, थोड़ा ज्ञान हो जाता है शास्त्र का तो अहंकार आ जाता है। तो उन्होंने कहा, देखिए, अगर आपके पास अधिक ज्ञान है तो इसका अर्थ यह है, इसका केवल अर्थ यही है कि आपके पास अधिक ज्ञान है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं, ये इसका अवकाश नहीं मिल रहा आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिंपल झाड़ू मार रहा है, आप यह क्या जानते हैं कि उसको नाम में कितनी रुचि प्राप्त हो रही है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, परम पूज्य जयप्रदा का महाराज के कुछ ब्रह्मचारी शिष्यों के बारे में मैंने सुना, गुणगान करने वाला, निंदा नहीं करूंगा। तो महाराज जी ने कहा, अरे भाई, वो 20-25 साल से मंदिर में झाड़ू मार रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, महाराज ने व्यक्तिगत कहा कि क्या आप इतने सीनियर डिवोटी हैं तो क्यों नहीं आप एक और रिस्पॉन्सिबल सेवा ले लेते हैं मंदिर में, मतलब उच्चतर पद ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, क्या ये सेवा नहीं है? क्या मंदिर में मंदिर का मार्जन करना आपकी सेवा नहीं है? आप ये बोल दीजिए कि आपकी सेवा नहीं तो हम तुरंत मंदिर छोड़ देंगे। इस प्रकार से बोल्डली बोला। तो मैंने कहा, नहीं, ये भी मेरी सेवा है। तो कह रहे, महाराज जी, ये सेवा करके जितना हम लोग को सुख नाम में मिल रहा है वो उसमें हम तृप्त हैं, तो हमें कृपया यही सेवा करने दीजिए। और ये सेवा हमसे छीन ली जाएगी तो हो सकता है कि किराए के लोगों को लेकर के, पैसे को लेकर के मंदिर के मार्जन किया जाए, ये उनका भाव है। तो कहने का मतलब ये था, मैं ये बात क्यों बोलने लग गया था, हाँ, तो कोई व्यक्ति अगर मंदिर का मार्जन कर रहा है तो उसका नाम में कितनी रुचि है ये हम नहीं गेज कर सकते। कोई भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, सिंपल सेवा कर रहा है, सिंपल मतलब वैसे तो बहुत एग्जॉल्टेड है, या भगवान के बर्तन माज रहा है, हो सकता है उसका नाम कभी ना जाने, हो सकता है व्यासासन पे वो कभी ना बैठे, लेकिन कितना वो भगवान में आ सकता है, ये इसका मीटर मेरे पास नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितना उसको भगवान से प्रेम है, ये मेरे पास मीटर नहीं। और हम सब लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, हम लोग इतने छोटे हैं कि भगवान यही देखते हैं कि वह सेवा में लगा है, वो क्या सेवा में लगा है उसे महत्वपूर्ण नहीं,
किस भाव से लगा है और किसी तरह सेवा में लगा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? हर भक्त के अंदर सम्मान, और कभी आपको लगे असम्मान की भावना आ रही है हृदय में, तो ये देखिए वो भक्त जो सेवा कर रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ? एक दिन तो कर लूंगा, रोज कर सकता हूँ, दिनों दिन कर सकता हूँ, पूरी जिंदगी कर सकता हूँ, तो उत्तर हमारे हृदय में आ जाएगा, ना हम नहीं कर सकते, तो उसका सम्मान करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? बड़ा आसान होता है इसको हटाओ उसको, ऐसे करो, तो कुछ नहीं कर रहा। कृपया अपने आप को उस स्थिति में रखिए और फिर देखिए कि क्या आप इस प्रकार से रोज कर सकते हैं। जैसे कोई मुझे कहे सुबह रोज कुकिंग करेंगे, मैं नहीं कर सकता, पहली बात तो आती ही नहीं मेरे को करनी, खाली जूस बना सकता हूँ थोड़ा सा, संभव नहीं मेरे लिए, संभव बिल्कुल नहीं है। तो यह देखना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर भक्त को भगवान के द्वारा ओज बल शक्ति दी जा रही, जिसके द्वारा और उसका उपयोग वह भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। ये प्रैक्टिकल चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है? तो हम अगर कुछ सेवा कर पा रहे हैं तो भगवत कृपा से ही है। कल ही एक भक्त बता रहे थे, अकस्मात उनकी आंख से ऊपर चढ़ना चालू हो गई, हाथ ऐसे मुंह होने लग गया। हमने कहा प्रभु जी यही तो बात है, हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमको लगता है कि जैसा शरीर आज है वैसा हमेशा रहेगा, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात मुकुंदत प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे, तुम आज किसी भक्त का मजाक बना रहे हो, बेचारा किसी परेशानी में है, किसी भी तरह माया में है, कैसे भी है, हो सकता है कि दो हफ्ते बाद तुम भी उसी स्थिति में चले जाओ। इसलिए कभी किसी पर आलोचना नहीं करनी चाहिए, और हो सकता है वो आज उसका पतन हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन अंदर से कितना बड़ा भक्त हो। चित्र के वृत्तासुर के संबंध में आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो इसलिए भक्तों की आलोचना करना हमारा कोई, ये हमारी सेवा नहीं है, हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं है। यदि आपके अनुगत्य है, आपसे पूछ रहा है मैं कैसे इंप्रूव करूं, तो बताना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? और इसकी हित कामना से, ए तुम जब मैं सोता रहता है क्या हो गया, इतने साल हो गए तुम्हारा तो कुछ होगा ही नहीं, इस प्रकार की यह तरीका बिल्कुल भी नहीं। भक्तों को किसी को निरुत्साहित कर देना बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा अपराध है। हमेशा लोगों को उनकी सेवा में प्रोत्साहन देना चाहिए। ओके, भक्त में ऐसा गर्व अशम्य है, अशम्य है। अशम्य किसके द्वारा है? भगवान के द्वारा अशम्य है। भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त हृदय में गर्व को सहन नहीं करते। मेरे गुरु महाराज संबंध कह रहे थे, हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी सेवा, किसी एक पे आक्षेप नहीं है, कोई भी सेवा कर रहे हैं, अगर उसमें गर्व है तो वह कृष्ण को सुख नहीं देती। इफ यू आर ऑफरिंग आवर सर्विसेज विद प्राइड, इट डज नॉट प्लीज कृष्णा। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी का बहुत प्रसिद्ध वो क्लिपिंग है भोग लगाने के संबंध में, जब प्रभुपाद जी बिल्कुल रो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि भगवान मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत गरीब हूं, और मैं, मेरे कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आपकी कृपा से ये अन्न मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कुछ बना के लाया हूं, आप स्वीकार कर लीजिए। और फिर बोलते बोलते प्रभुपाद रोने लगते हैं, सुना होगा बहुत से भक्तों ने, और कहा इस प्रकार की भावना होगी तो कृष्ण भोग स्वीकार करेंगे। तो इस तरह हम लोग तो रोते नहीं है, लेकिन हम लोगों को कम से कम यह सोचना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं कृष्ण की सीधा सेवा करने की, गुरु महाराज के माध्यम से आप जानते हो हम कुछ सेवा को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ये भावना रहनी चाहिए। गर्व का कोई स्थान नहीं है। इस संबंध में एक छोटा विनोद की बात है, परम पूज्य क्या नाम बोला ना से नाम उनका निरंजन महाराज से एक माता जी ने, रशिया में है, उनसे पूछा, महाराज मैं बड़े सफल हूं अपनी सेवा में, मैं मंदिर के लिए ईंटें स्पॉन्सर करानी है, सारी चीजें स्पॉन्सर करा लेती हूँ, ये सब जो भी सेवा दी जाती है मैं कर लेती हूँ, तो मेरे हृदय में अहंकार आ जाता है, तो क्या मैं इस अहंकार को स्वयं ही काट दूं, त्याग दूं, या प्रतीक्षा करूं कि कृष्ण इस अहंकार को त्यागेंगे, त्याग करवाएंगे? तो निरंजन महाराज बोले कि बहुत अच्छा है कि आप इस अहंकार को स्वयं ही त्याग दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण इस अहंकार को त्याग करवाएंगे हो सकता है कि वो आपको पसंद ना पड़े। कृष्ण का स्तर स्टाइल जो है थोड़ा पेनफुल हो सकता है, बेहतर है खुद ही इस दोष को मन में पकड़ते हुए त्याग देना चाहिए। वैष्णव को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अन्यों का आदर करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरे। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य को विनीत भाव से हरि के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा मिथ्याहंकार से रहित एवं अन्यों को सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मनोदशा में ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप संभव है। तो आप जानते हैं, लेकिन श्लोक बहुत गंभीर है, समय कम है, तो हम कितनी व्याख्या कर सकते हैं पता नहीं, प्रयास करूंगा। एक बात, हमें तृणादपि होने की जरूरत ही क्या है? क्या इसके बिना हम जप नहीं कर सकते?
कर सकते हैं, लेकिन रस का अनुभव नहीं होगा। कृष्ण अपने नाम की मधुरता का प्राकट्य तभी करते हैं जब भक्त इस प्रकार से जप करता है। यह श्लोक इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिप्शन भी है और प्रिस्क्रिप्शन भी है। जो इस भक्त को नाम में रुचि प्राप्त है, उसकी भक्ति बढ़ी हुई है, उसके अंदर ये गुण होगा। माने शून्यता हम सुनते हैं, भाव उस स्तर पे होता है जिसमें सदा नाम गाने सदा रुचि प्राप्त होता है। और प्रिस्क्रिप्शन भी है, जिनको नाम में सुख प्राप्त नहीं है वह इस भाव को अंगीकार करके भगवान का नाम जप करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सभी ने सुना होगा, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, सुने है ना श्लोक, तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, ये सुना है। ये तो डिस्करेजिंग श्लोक है। इन एनकरेजिंग श्लोक क्या है कि महाप्रभु के अगर आश्रय लेता है, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये श्लोक का आश्रय लेकर के त्रिनादपि सुनिचेना, ये महाप्रभु की आज्ञा है, इस आज्ञा का आश्रय लेकर के अगर महाप्रभु का आश्रय लेता है तब महाप्रभु की कृपा से उसे भगवत प्रेम बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तब आप कहेंगे कि यह कैसे आए गुण, तो इसको भी इसमें बहुत व्याख्या है, लेकिन छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, यह तो समझ रहे हैं ना कि जो व्यक्ति त्रिनादपि सुनिचेना है, तरोरपि सहिष्णुना है, उसका हृदय बहुत कोमल है, उसके हृदय में कठोरता नहीं है। कठोरता होगी तभी तो मैं दूसरे का असम्मान करूंगा। तो जैसे मुझे निंदा खराब, मुझे मतलब मैं मतलब हम सभी को अपनी निंदा सुनना खराब लगता है, असम्मान होना प्राप्त होना खराब लगता है, ऐसे दूसरे को भी तो लगता है कि नहीं लगता है। अरे मुझे पिन मारेंगे दर्द होता है, तो सामने वाले को भी दर्द होता है कि नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं। तो जब हृदय कठोर है तो ये बात समझ में नहीं आती, अरे किसी को बुरा बोल दूंगा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हृदय कोमल होता जाता है भक्ति के प्रभाव से, नाम जप करते रहते हैं, भक्ति बढ़ती जाती है, तो हृदय कोमल होते लगता है, तो ये गुण अपने आप ही आता है। हमें प्रयास भी करना है, और प्रयास करेंगे तो जल्दी प्रगति होगी, और भक्ति करते रहेंगे हृदय कोमल हो जाएगा तो दूसरों को कष्ट देने की भावना हृदय से निकल जाएगी। भागवत में बोला गया है कि पूरे विश्व का द्रोही क्यों ना हो, अगर वह भगवत भक्ति करता है तो वह ठीक हो जाता है, पूरे विश्व का द्रोही करने वाला। तो यानी कि अभिधेय क्या है, भगवान की भक्ति। तो ये प्रिस्क्रिप्शन भी है, इस भाव को अंगीकार करके अपने को समझते हो कि मैं कौन सा बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। अगर हम भौतिक उपलब्धियों की बात भी करें तो कर्मी लोग भी भौतिक उपलब्धियों के मामले में हमसे कहीं अधिक बड़े हैं, है कि नहीं? लेकिन वे भगवान को प्रिय नहीं है, isn't it? कोई भी आप सेवा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैं किसी सेवा का नाम लूंगा तो लगेंगे उसका आक्षेप कर रहा हूं, कुछ भी, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कर्मी लोग हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि उसी में वो लगे हुए हैं। लेकिन क्या वो कृष्ण को प्रिय है? तो इसलिए सब अभी क्या कृष्ण को प्रिय नहीं है। तो इन सेवाओं को जब हम नम्रता से भगवान के सामने अर्पित करते हैं तब हम कृष्ण को प्रिय हो पाते हैं। कुछ कहना चाहता हूं मैं थोड़ा सा, जो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है उसके संबंध में। देखिए, तरोरपि सहिष्णुना का अर्थ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसमें कहते हैं कि वृक्ष किसी से पानी भी नहीं मांगता है यद्यपि वो सूख रहा हो, ये वृक्ष की सहिष्णुता है। सुने होंगे आप ये बात। और जो लकड़हारा उस पेड़ को काटने आ रहा है वह दोपहर में उसी पेड़ की छाया में रहता है। एकदम तो पेड़ कटता नहीं है, लेकिन पेड़ बिल्कुल भी, और हो सकता हो अगर फल वाला पेड़ हो तो फल भी खाए उसका, फिर भी पेड़ कोई भी मतलब क्या कहेंगे उसको, प्रतिकार नहीं करता है कि तुम मुझे काटने आ रहे हो और तुम मुझे नहीं काट सकते, मतलब मैं तुमको फल नहीं दूंगा या छाया नहीं दूंगा। देख रहे हैं कितना गंभीर गुण है। इसी को भगवद गीता में भगवान 12वें अध्याय में बोल रहे हैं कि व्यक्ति गतव व्यथा, कोई व्यक्ति उनका अपकार भी कर रहा है तो भी वे व्यथित नहीं होते। वो ये समझ रहे हैं कि मेरा प्रारब्ध कर्म है और ये व्यक्ति हेल्पलेस को क्या बोलेंगे, असहाय है किसी और तरह से कार्य करने के लिए, तो मेरे प्रति बुरा बर्ताव करने के प्रति असहाय है। ये लाइन समझ में आई? उसे ऐसा करना ही पड़ रहा है क्योंकि परमात्मा उसको प्रेरणा दे रहे हैं और मेरा कर्म है इसलिए वो मेरे सामने से प्रस्तुत कर रहा है। ये हमने कई बार सुना है लेकिन इसको जीवन में धारण भी करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात इस संबंध में भगवान बुद्ध की भी है। भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दे रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, आप ये को गाली दे रहा है, आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे? तो बोले, ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं, मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूं। मान लो हम लोग कह, तुम गधे हो, हमें गुस्सा आ जाता है। गधे हैं? गधे तो नहीं है, देख सकते चेक करने, गधा तो नहीं हूं मैं, तो गुस्सा क्यों होना? और यदि हम गधे हैं तो फिर बुरा क्यों मान रहे हैं? तो अब देख रहे हैं हमारा खुद का बहुत बड़ा एस्टिमेशन है कि हम बहुत महान हैं, इस कारण से अरे मेरी महानता को नहीं समझ रहा, मुझे गधा कह रहा है। और उसमें फिर हम लोग कितने, हमारा मन उसमें कितना उलझ जाता है, हमारा जब डिस्टर्ब होता है, हमारी साधना डिस्टर्ब होती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि बाहर के अन्य लोग या भक्त भी हमसे कैसे बर्ताव करेंगे। केवल कंट्रोल इसी पे है कि हम उसके प्रति कैसे बर्ताव कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ऐसे संबंध में एक और भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी घटना मैंने पढ़ी थी, बहुत बचपन में पढ़ी लेकिन आज भी याद है बात, कि भगवान बुद्ध एक आम के पेड़ के पीछे खड़े थे और कुछ लड़के बुद्ध भगवान को नहीं देखे और वह पत्थर मार रहे थे उस पेड़ पे, और वो पेड़ उनको मीठे मीठे फल दे रहा था। एक पत्थर भगवान बुद्ध के लग गया और उनके सर से खून आने लगा, तो फिर वो रोने लगे। तो जब बच्चे वहां पे आए, बच्चों ने देखा, वो भले भयभीत हो गए, वो देखे कि भगवान बुद्ध रो रहे हैं, हमारा अपराध हो गया, हमें शाप दे देंगे, तो उन्हें क्षमा मांगा, उन्हें कहा और उन्हें कहा कि हमने आपको कष्ट दिया, हमें क्षमा कर दीजिए। कहते मैं, आपने मुझे कष्ट दिया है इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इस पेड़ से भी निम्न हूं। क्यों? आपने पेड़ को पत्थर मारा, उसने आपको फल दिए मीठे फल, और आपने मुझे पत्थर मारा, मैं आपको भय दे रहा हूं। एकदम अचिंत चेतना। अब हम लोग अगर वहां होते तो लाओ पत्थर, तेरे के किसने मारा मेरे को, हम मारेंगे उसको। लेकिन इस प्रकार की विद्रोह की भावना भक्ति हृदय से पूरी तरह से चली जाती है। बहुत सारी बातें इस पर हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, रोज ही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान के नाम से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ये गुण दीजिए ताकि मैं आपकी सच्ची सेवा जो आपको संतुष्ट कर सके वैसा करने में समर्थ हूं। समझ रहे हैं? ये त्रिणादपि सुनी सेना का गहना मुझे आपने सुना ही होगा कि भक्तों को यह गहना गले में पहन लेना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण मंत्र को इस धागे में, इस श्लोक के धागे में पिरो करके ग्रहण कर लेना चाहिए। ये हरे कृष्ण की मणियां है ना, 16 मणियां, इनको इस धागे में पिरो करके अपने गले में धारण करना चाहिए। जैसे हमारी कंठी टूट जाती है, तुरंत एक दिन सुबह मंगल आरती के समय भक्त आए, प्रभु जी कंठी है क्या आपके पास? तो कंठी नहीं होना एक बड़ा, मतलब अरे कंठी तो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उसी प्रकार से